परम शिक्षक, परम सद्गुरु, स्वयं परम पिता शिव परमात्मा है। वे परम शिक्षक इसलिए हैं क्योंकि वे ही ज्ञान के सागर हैं, जिन्होंने राज्य का ज्ञान देकर हम सभी मनुष्य आत्माओं को भरपूर किया है। इसी राज्यों का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी है। इस शिक्षा से हम अपने जीवन को कैसे परिवर्तन करें, आइए देखते हैं इस एपिसोड में।
आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय का स्पष्टीकरण। प्राय लोग सोचते हैं कि गीता ज्ञान तो कुछ सन्यासी, तपस्वियों, पंडितों के लिए है, परंतु नहीं, गीता ज्ञान संसार के हर मनुष्य मात्र के लिए है। और यदि आज मनुष्य गीता ज्ञान का आचरण करने लगे तो उसके जीवन का संपूर्ण तनाव नष्ट हो जाए, उसकी आसक्तियां नष्ट हो जाएं, संसार में जो आज समस्याओं का अंबार लगा हुआ है वो सब विलीन हो जाए, तनाव में जो हर व्यक्ति जी रहा है वो तनाव मुक्त होकर जीवन का सच्चा सुख प्राप्त करने लगे, तो गीता से हमें प्यार करना चाहिए, गीता का हमें अध्ययन करना चाहिए। केवल पाठ करने के लिए नहीं, लेकिन एक एक श्लोक के अर्थ को समझकर अपने जीवन में उसको उतारने के लिए। गीता हमारी सबसे अच्छी शिक्षिका है, परमात्मा परम शिक्षक है और उसकी शिक्षाएं श्रीमद् भगवत गीता में लिखी गई हैं। तो गीता हमारी सबसे अच्छी शिक्षिका, सबसे अच्छा मित्र साबित हो सकता है यदि हम बहुत ध्यान से श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों पर ध्यान दें, व्याख्या पढ़ें, जीवन में अपनाएं। कठिन बात नहीं है। भगवान इस छठे अध्याय में राजयोग की विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और मेरी दृष्टि में यह अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। अगर इसकी हर श्लोक का यथार्थ अर्थ एक मनुष्य समझ ले, चाहे वो साधक हो, तपस्वी हो, योगी हो या सिंपल गृहस्थी हो, तो उसे योग के बारे में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम अपनी सरल भाषा में आपके समक्ष स्पष्ट करेंगे इन सभी बातों को। तो भगवान फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं, सन्यासी को अग्नि का त्याग करना होता है, मतलब भोजन नहीं बनाना होता है, अग्नि नहीं जलानी होती है। और कहते हैं कि केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। वास्तव में यहाँ सन्यास का अर्थ भी सूक्ष्म और योगी का भी यथार्थ अर्थ समझ लेना चाहिए। सन्यास घर गृहस्थ काम धंधे और जिम्मेदारियों का नहीं, सन्यास होना चाहिए पाप कर्मों का, सन्यास करना चाहिए मनोविकारों का, सन्यास कर देना चाहिए व्यर्थ के विचारों का, दुर्भावनाओं का। योग की चर्चा हम हर अध्याय में करते आ रहे हैं, जैसा जैसा श्लोकों में वर्णन आता है, क्योंकि गीता एक योग शास्त्र है, इसलिए योग के बारे में बार बार उसमें श्लोक आए हैं और बार बार हम उसकी व्याख्या आपके सामने करेंगे। योग विषय भी ऐसा ही है कि उसको एक दो दिन में, एक दो लेक्चर से समझा नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत योग अभ्यास करे तो धीरे धीरे योग की सूक्ष्मताएं उसकी समझ में आती हैं, क्योंकि मनुष्य का अपना अनुभव ही उसके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस है। बिना अनुभवों के योग जैसी गूढ़ विद्या को जाना नहीं जा सकता। केवल पढ़ लेने से, केवल व्याख्याएं कर देने से वास्तव में इस तत्व के ज्ञान को, इस रहस्य को कोई भी मनुष्य जान नहीं पाता है। हमने अपने अनुभवों से, लंबे काल के अनुभवों से, जो कोई ये बातें अनुभव की हैं, उसके आधार से ही गीता में वर्णित इस योग की व्याख्या हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान ने कहा है कि बहुत गहरी बात हो गई कि योग अभ्यास में सफलता के लिए अनासक्त कर्म योग आवश्यक है, कर्मों में आसक्ति का त्याग आवश्यक है। बिना निष्काम भाव से कर्म किए कोई भी मनुष्य योग युक्त नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जब वो अच्छी तरह योग युक्त हो जाता है तो उसके मन में संकल्पों का अभाव हो जाता है, अर्थात उसका मन संकल्पों से शून्य हो जाता है, शांत हो जाता है। और ऐसी स्थिति संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि जब किसी मनुष्य का मन पूरी तरह निर्संकल्प हो जाए तब उसके मन से बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, जो संसार के वायुमंडल को बदलते हैं, जो प्रकृति को बदलते हैं, जो मनुष्यों को बहुत अच्छी प्रेरणाएं प्रदान करते हैं। यदि हमारे भारत से, क्योंकि भारत ही योग भूमि है, आध्यात्म की भूमि है, इसलिए मैं भारत की बात कह रहा हूँ कि यदि हमारे भारत से 100 लोग ऐसे महान योगी बन जाएं, जो अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से तो कर्म करें और योगारूढ़ होकर, योग युक्त होकर निर्संकल्प स्थिति को प्राप्त कर लें, जिसको महर्षि पतंजलि ने निर्संकल्प समाधि भी कहा है, तो इस संसार का कल्याण होने में देर न लगे। ये संसार बहुत जल्दी स्वर्ग में बदल जाए, यहाँ से पाप का नाम निशान मिट जाए और मनुष्य निर्विकारी बनकर अपने मानव जीवन का संपूर्ण सुख और आनंद प्राप्त कर ले। परंतु ये स्थिति इतनी सहज संभव नहीं होती। अनासक्त कर्म करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब सारा दिन मनुष्य कर्म में व्यस्त रहता है, कर्म के अनेक संकल्प उसके मन पर छाए रहते हैं, उसकी बुद्धि सारा समय कर्म में, उनके निर्णय लेने में, उलझनों को समाप्त करने में, समस्याओं से निपटने में ही लगी रहती है। किसी को संतुष्ट करना है, कोई नाराज हो गया है, कोई अतृप्त है, कोई क्रोध कर रहा है, कोई चिड़चिड़ेपन में है, कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, ऐसे अनेक लोगों के साथ मनुष्य को सारा दिन अपना समय व्यतीत करना पड़ता है, उनसे इसके मन पर बहुत बुरा असर रहता है। और जब ऐसा व्यक्ति योग अभ्यास के लिए बैठता है तो वही वही संकल्प उसके मन को बार बार विचलित करते रहते हैं और एक मनुष्य योग के फील्ड में सफल नहीं हो पाता। बल्कि जब वो मन को शांत करना चाहता है तो उसके अंतर मन में छुपे हुए बहुत सारे विचार बाहर प्रकट होकर उसको और परेशान करने लगते हैं। छुपी हुई दूषित वृत्तियां, जिसको उसने नष्ट नहीं किया है, ऐसे मनोविकार उस समय उजागर हो जाते हैं और उस व्यक्ति को परमात्मा से संबंध स्थापित नहीं करने देते। इसलिए परम आवश्यक है कि योग अभ्यास के लिए मनुष्य निर्विकारी जीवन बनाए, उसे संतुष्ट रहना चाहिए, उसे कर्मेंद्रियों की आसक्तियों से परे चले जाना चाहिए। वैसे ही मनुष्य विचार करे, मान लो आपकी आयु 40 साल हो चुकी है, 50 साल हो चुकी है, आप विचार करें, इतना समय कर्मेंद्रियों का भोग भोग कर देख लिया, क्या उससे मिला? क्षणिक सुख, बाद में दुख, अशांति और परेशानियां, अहंकार आया, क्रोध आ गया और जीवन का वास्तविक आनंद चला गया। अब इन सब से जरा उपराम होकर क्यों न हम ईश्वरीय मिलन का सुख प्राप्त करें? बात करें आप अपने से, सारा संसार इसी मृग तृष्णा में उलझा हुआ है, क्यों न हम इस सुंदर समय में परमात्म मिलन का रसास्वादन करें? क्यों न हम श्रेष्ठ कर्म करके अपना जन्म जन्म का भाग्य महान बना लें? ऐसी बातें करते हुए अपने चित्त की व्यक्तियों को, अपने मन के विचारों को, अपने संस्कारों को थोड़ा समेट कर, थोड़ा उन्हें न्यून करके, थोड़ा कुछ चीजों का त्याग करके हम अपने चित्त को शांत और एकाग्र करें और फिर योग युक्त होने के लिए थोड़ा सी साधना करें, अर्थात बार बार थोड़ा अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही मन जल्दी शांत हो जाता है। हमें उन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे मन को विचलित करते हैं। जैसे जो मनुष्य बहुत बाह्यमुखी है, जो सारा दिन बातों में रहता है, व्यर्थ गपशप लगाए रखता है, छोटी सी बात का विस्तार करके लंबा चौड़ा वर्णन करता है, ऐसा व्यक्ति जब योग अभ्यास में बैठेगा तो उसका मन शांत कदापि नहीं हो पाएगा। इसलिए जो योग युक्त होने के जिज्ञासु हैं, उन्हें चाहिए वो अंतर्मुखी बन जाएं। वो थोड़ा समय भी शांत रहने का अभ्यास करें और जब वो बोले तो उनके बोल संयमित हो। अगर 10 बोल की जगह 5 बोल से काम चल सकता हो तो 5 ही बोले, इससे वाचा की शक्ति बहुत जमा हो जाएगी और ये हमें एकाग्र करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। ऐसे ही योग युक्त होने के इच्छुक व्यक्ति को मान और शान का त्याग कर देना चाहिए। मान तो संसार में पाकर देख लिया, ये सांसारिक मान मनुष्य आत्मा को तृप्त करने वाला नहीं है। ये मान कहीं कहीं तो मनुष्य के अहंकार को बढ़ाकर उसके जीवन को और परेशानियों में डालने वाला बन जाता है। शान से रहना, बहुत ठाट बाट से रहना, ये भी उस व्यक्ति के लक्षण नहीं जो योग युक्त रहना चाहता हो। योग युक्त रहने वाले को तो बहुत सादगी से भरा जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसके जीवन से त्याग झलकना चाहिए, उसके मस्तक पर तेज दिखाई देना चाहिए। जिस चीज की भी आवश्यकता पड़े उसको तुरंत त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही योगारूढ़ हो सकता है, योग युक्त हो सकता है। इसके साथ ही साथ ये जानना भी परम आवश्यक है कि योग अभ्यास कैसे प्रारंभ करें, क्योंकि यदि योग का ज्ञान ही नहीं होगा तो ये त्याग और ये सब वैराग्य की बातें निष्फल हो जाएंगी। तो सबसे पहले योग के बारे में आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान संपूर्ण रूप से होना चाहिए, जिसकी चर्चा हम दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में बहुत अच्छी तरह से कराए हैं। आप उसको दोबारा देख सुन सकते हैं। और फिर अभ्यास की आवश्यकता है कि मैं चमकती हुई आत्मा हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं इस देह से न्यारी हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, बिंदु हूँ, बहुत सूक्ष्म हूँ। ऐसा अभ्यास बार बार करके स्वयं को देह से डिटैच करना चाहिए, अशरीरीपन का अभ्यास करना चाहिए, अपनी निराकार स्थिति में बार बार पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद अपने मन और बुद्धि को ले चलना चाहिए परमात्मा की ओर। यहाँ पर हमारे मन और बुद्धि दो तरह से कार्य करेंगे। मन का काम संकल्प करना है और बुद्धि हमारा तीसरा नेत्र है, थर्ड आई ऑफ विजडम है ये। हम इस तीसरे नेत्र से परमात्मा के ज्योति स्वरूप को देखें, विजुअलाइज करें। वो महाज्योति है, वो परम धाम में है, जो सूर्य चांद तारों के भी परे है। उस महाज्योति पर, उसके दिव्य स्वरूप पर अपनी बुद्धि को स्थिर कर दें। सरल भाषा में हम ऐसा अभ्यास करें मानो हम तीसरे नेत्र से परमात्मा के ज्योति स्वरूप को निरंतर निहार रहे हैं। उसको देखने में ही परम सुख है, परम आनंद है। हमारे ये नयन और तीसरा नेत्र तृप्त हो जाते हैं ज्यों ज्यों हम उसे निहारते हैं, देखते रहें। उसको देखते रहने से मन स्वतः ही शांत भी हो जाएगा और धीरे धीरे उसके चिंतन में भी लग जाएगा। परमात्मा के गुणों का, उसके कर्तव्यों का हम चिंतन करें। वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुखों का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है, वो अजन्मा है, त्रिकालदर्शी है, सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला है, भाग्य विधाता है। इस तरह उसके गुणों का चिंतन करते हुए हम धीरे धीरे मग्न अवस्था में पहुंचेंगे और एक स्थिति वो आएगी कि केवल हम उसे देखते ही रहेंगे, मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, अर्थात मन और बुद्धि उसके स्वरूप पर संपूर्णतया एकाग्र हो जाएंगी। यही वो निर्संकल्प स्थिति है, जिसे निर्बीज अवस्था, बीज रूप अवस्था, निर्संकल्प समाधि या सर्वोच्च स्थिति कहते हैं योग की। इसमें यदि एक योगी थोड़ी देर के लिए भी स्थित हो जाता है तो उसे परमात्म बल प्राप्त होता है, उसे ईश्वरीय सुख की लंबे समय तक गहन अनुभूति रहती है। और वास्तव में जब हम उसके स्वरूप को विजुअलाइज करते हैं तो उससे हमारा एनर्जेटिक कॉन्टेक्ट हो जाता है और उसकी संपूर्ण एनर्जी हम में आने लगती है। वो सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियां हम में प्रवेश करने लगती हैं। वो शांति का सागर है, उसकी शांति हम में आने लगती है। वो प्रेम का सागर है, उसका प्यार हमें अनुभव में आने लगता है। वो सुखों का दाता है, हमारे दुख समाप्त हो जाते हैं, हमें गहन सुख में चले जाते हैं। तो इस तरह हम योग अभ्यास किया करें। इसका अभ्यास कर्म में भी किया जा सकता है कि हाथों से हम कर्म कर रहे हों और बुद्धि परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर हो, मुख से बोल रहे हों और बुद्धि से परमात्मा को देख रहे हों, कानों से सुन रहे हैं और बुद्धि परमात्मा का रस पान कर रही हो, ऊपर डबल काम करना होगा। इससे कर्म के संकल्प भी कम हो जाएंगे और बुद्धि भी बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। परंतु ऐसे योग अभ्यास के लिए पवित्र जीवन जीना आवश्यक होता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बार बार एक शब्द आया है, इंद्रियों के भोगों के रस से परे हो जाने वाला ही सच्चा योगी है। जो इंद्रियों का गुलाम है वो कभी योगी नहीं बन सकता है। इसलिए ऐसे योग अभ्यास के लिए पवित्र जीवन जीना परम आवश्यक है। क्यों है ये रहस्य भी आपके सामने स्पष्ट होना चाहिए। ये ऐसा रहस्य है जिसे बहुत लोग, इस संसार के अच्छे अच्छे विद्वान और योग अभ्यास करने वाले भी नहीं जानते हैं। ध्यान से सुनेंगे। जब हम योग अभ्यास करते हैं, जब हम अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर करते हैं तो हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को भी अत्यधिक शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है। ब्रेन नेचुरल रूप से कार्यरत है, जो उसका नेचुरल फंक्शन चल रहा है वो तो एक नेचुरल रूप से चलता है, परंतु यदि किसी भी मशीन के, किसी भी शक्ति के नेचुरल स्वरूप से हटकर कुछ और कार्य उससे लिया जाए तो स्पेशल पावर्स की जरूरत पड़ती है। तो हम अपनी बुद्धि को अब लगा रहे हैं एक तरफ, केवल एक तरफ, परमात्मा की तरफ, तो ब्रेन को विशेष शक्तियां यूज करनी पड़ती हैं और वो शक्ति बिना ब्रह्मचर्य के प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए वो मनुष्य जो पवित्र जीवन नहीं जीता, योग का सर्वश्रेष्ठ आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। यही बहुत बड़ा त्याग है। और एक बार जब मनुष्य को योग का ये सर्वोच्च आनंद मिल जाता है तो उसे विकारों का आनंद बेकार प्रतीत होने लगता है, क्षणिक प्रतीत होने लगता है, दुखदायी प्रतीत होने लगता है। पवित्रता ही तब आनंदकारी बन जाती है। तब उसका महामंत्र होता है, प्योरिटी इज द बेस्ट एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। तो हम सभी अपनी बुद्धि को स्वच्छ भी रखें, पवित्र भी करें, ताकि हम योगारूढ़ होकर परमात्मा से निरंतर मिलन मना सकें और इस संसार में बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैला सकें। हम सभी को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो मनुष्य योग युक्त है वो इस संसार के परिवर्तन में बहुत सुंदर भूमिका निभाता है, क्योंकि उससे निरंतर पवित्रता, शांति और शक्तियों की तरंगे चारों ओर फैलती हैं, सारे संसार में फैलती हैं, जो प्रकृति और वायुमंडल को पावन करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो आओ हम सभी योग युक्त हो जाएं। परमात्मा इस समय स्वयं आकर योग सिखा रहे हैं, इसलिए भगवान को योगेश्वर भी कहा जाता है। योगियों का भी वो ईश्वर है तो योग सिखाने वाला भी वो ईश्वर है। श्री कृष्ण को भी योगीराज और योगेश्वर नाम दिया गया है, जबकि उन्होंने कभी योग साधनाएं नहीं की। पूर्व जन्म में उन्होंने योग साधनाएं की थी, जिसके बल से उन्होंने ये महान स्टेटस, ऐसा श्रेष्ठ पद प्राप्त किया था जो नेक्स्ट टू गॉड है। तो हम भी परमात्म मिलन का सुखद अनुभव प्राप्त कर लें, उसका ये सुंदर समय इस समय संसार में चल रहा है। भाग्यवान है वो आत्माएं जो परमात्म मिलन का सुख प्राप्त कर रही है, जो इस संसार से उपराम होकर मनुष्य से देवता बनने के लिए राजयोग की साधना कर रही हैं। आप सभी को भी इस पथ का अनुगामी बनने का हार्दिक निमंत्रण है।
तो परम शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो सहज ही राजयोगी और तपस्वी बन जाएंगे और हंसते हंसते सभी मुसीबतों और परेशानियों का सामना कर सकेंगे। इसी के साथ हम 16वें एपिसोड के अंत में आ पहुंचे हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ओम शांति वीडियो चैनल, शांतिवन, तलेटी, आबू रोड 307510। हमारा फोन नंबर है 09414423866।
राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना, गुण प्रभु के गुन गुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना, गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। संसार सागर की लहर है, साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है, हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना, हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। है ये विश्व सारा, करनिया पार है तुमको लगाना, बन के खेवन हार नैया पार है तुमको लगाना, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना, गुण प्रभु के गुनगुनाना सब पे खुशियाँ तुम लुटाना, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा।